नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। कहा, दूसरे देशों पर निर्भरता भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। भारत ने कहा, H-1B वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रतिबंधों से मानवीय संकट की संभावना। उम्मीद जताई कि अमरीकी अधिकारी बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन सहित कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमला। चाइना मास्टर्स 2025 बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 43 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। प्रधानमंत्री आज भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा।
दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई प्रमुख समुद्री परियोजनाओं के साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र अगली पीढ़ी के सुधारों के दौर से गुजर रहा है।
भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी, हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंध के संभावित असर पर भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित हितधारक अध्ययन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत और अमेरिका की एक दूसरे के उद्योगों के नवाचार और रचनात्मकता में भागीदारी है। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के उद्योगों से आगे की श्रेष्ठ संभावना पर परामर्श करने की आशा की जा सकती है। श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभा, गतिशीलता और आदान प्रदान ने अमेरिका तथा भारत दोनों ही देशों में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और धन सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से कई परिवारों के लिए बाधा उत्पन्न होने के कारण मानवीय संकट उत्पन्न होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आशा करती है कि इन बाधाओं का अमरीकी अधिकारी उचित तरीके से समाधान निकालेंगे। विश्व दर्पण के लिए रत्ना पांडे।
अमेरिका ने सीरिया के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस TPS का दर्जा समाप्त कर दिया है। साथ ही सीरियाई प्रवासियों को चेतावनी दी है कि अगर वे 60 दिनों के भीतर देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया जाएगा। ये कदम कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रवासियों से कानूनी दर्जा छीनने के व्यापक प्रयास के तहत उठाया गया। गृह सुरक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीरिया के हालात अब उनके नागरिकों को स्वदेश लौटने से नहीं रोक रहे हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। इलेक्ट्रॉनिक चेक इन और बोर्डिंग सेवा देने वाले सिस्टम को निशाना बनाकर किए गए एक साइबर हमले ने लंदन के हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन सहित कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर परिचालन बाधित कर दिया है। संचालकों ने बताया कि इस साइबर हमले के कारण उड़ानों में देरी हुई और कई उड़ानों को रद्द किया गया। ब्रसेल्स हवाई अड्डे के अनुसार इस हमले के कारण स्वचालित प्रणालियां निष्क्रिय हो गई हैं और केवल मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया ही संभव हो पा रही है। यूरोपीय आयोग ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों का 19वां पैकेज यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। कड़े उपायों के लिए अमेरिका के दबाव के कारण एक सप्ताह की देरी के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने घोषणा की कि नए पैकेज का लक्ष्य रूस के बैंक, क्रिप्टो परिसंपत्तियां और ऊर्जा आयात होंगे। पिछले सप्ताहांत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की विशेष खरीदारी को क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें पिछले सप्ताहांत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की शेष खरीदारी को रोकने के लिए यूरोपीय सहयोगियों का आह्वान किया था। पोलैंड ने कहा है कि उसकी सीमा के निकट यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमलों के दौरान हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए आज सुबह पोलैंड और सहयोगी देशों के विमान तैनात किए गए हैं। हवाई रक्षा और राडार प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
पोलैंड के सशस्त्र बलों ने कहा है कि ये अभियान रक्षात्मक है। इसका उद्देश्य पोलैंड के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। उसका कहना है कि वो यूक्रेन की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और पोलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा। इससे पहले 18 सितंबर को पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस के ड्रोन के कथित अतिक्रमण के बाद अमरीका के विदेश विभाग ने लगभग $780 मिलियन की कीमत की जेवलिन मिसाइल प्रणाली बिक्री करने की स्वीकृति दी। इस बीच रूस ने ड्रोन हमले के पोलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
रूस के MiG-31 युद्धक विमान के एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का कल उल्लंघन करने के बाद एस्टोनिया ने नाटो सहयोगियों के साथ परामर्श का अनुरोध किया है। ये विमान कल बिना अनुमति के एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करके फिनलैंड की खाड़ी पर 12 मिनट तक उड़ता रहा। नाटो ने इस घटना की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्षी ने कहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान लगातार कूटनीति और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाता रहा है। श्री अराक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में मलेशिया के आरुंचिया और सौ वोईक को 21-17, 21-14 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार दूसरी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे महिला एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 43 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिथ मुनी की 138 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत 412 रन बनाए। जवाब में भारत की स्मृति मंधाना ने सिर्फ 63 गेंदों पर 125 रन की बेजोड़ पारी खेली, लेकिन पूरी टीम 369 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। कहा, दूसरे देशों पर निर्भरता भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। भारत ने कहा, H-1B वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रतिबंधों से मानवीय संकट की संभावना। उम्मीद जताई कि अमरीकी अधिकारी बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन सहित कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमला। चाइना मास्टर्स 2025 बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 43 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।